आदरणीय भिक्षु संघ, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, धर्म गंगा के पावन प्रवाह का ये चौथा दिन गंगा के तट पर गंगा का कलकल निनाद सुनने के लिए फिर एकत्र हुए। इस सुहावने प्रवाह के लिए फिर एकत्र हुए। इस पर से बहती हुई शीतल बयार के लिए फिर एकत्र हुए। ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। शहर के हंगामे से, शहर के तनाव खिंचाव के जीवन से घंटे भर धर्म चर्चा हो जाए तो शांति मिलती है, अच्छा लगता है, पर बहुत अच्छा नहीं है। प्यासा आदमी गंगा के तट पर आए और केवल उसका कलकल निनाद सुन के चला जाए, उसके पावन जल का प्रवाह देख कर चला जाए, शीतल मंद समीर को अनुभव करके चला जाए, पर चुल्लू भर पानी नहीं पिए तो प्यासा का प्यासा रह गया ना। तो पानी पी कर देखना है। प्रारंभ तो ऐसे ही होता है कि धर्म की बात सुनते हैं, नहीं तो न जाने धर्म के नाम पर किन किन जंजालों में सारा जीवन बीत जाता। कम से कम शुद्ध धर्म की बात तो सुनी और उसके बाद चिंतन किया, मनन किया। मनुष्य है, चिंतन मनन करना उसका सहज स्वभाव है। किसी बात को अंधविश्वास से मान लेना ये मनुष्य का धर्म नहीं है। तो जो कुछ सुना उस पर खूब चिंतन मनन, लेकिन यही गाड़ी न रुक जाए। चिंतन मनन करने पर लगा कि बात तो काम की है, मेरे भी कल्याण की है, औरों के भी कल्याण की है, तो उसे अनुभव में से उतारे। धर्म की गंगा में डुबकी लगानी होती है। केवल तट पर बैठा रहे तो धर्म की गंगा का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग तट पर ही बैठे रहते हैं, डरते हैं डुबकी कैसे लगाएं। तो कहा किसी संत ने, मैं भोरी डरती रही किनारे बैठ, रिजन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो डरता रहा सो डरता ही रहा, किनारे पर बैठा रहा। जिसको परम सत्य का साक्षात्कार करना होता है, जिसको धर्म का सार प्राप्त करना होता है, उसे तो गहराई में डुबकी लगानी पड़ती है। समुद्र के किनारे किनारे खोखी सीप मिलती है, शंख मिलते हैं। गहराई से डुबकी लगाए तो मोती वाली सीप मिलती है, मुक्ता वाली तो मुक्ति मिलती है। डुबकी लगानी होगी तब कुछ प्राप्त होगा। अपनी अनुभूतियों पर बात नहीं उतरेगी तो लाभ होने वाला नहीं है। सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनती है, हमें मार्गदर्शन देती है, पर लाभ तो तभी होता है जबकि स्वयं उसे अनुभूति से उतारे। अपनी अनुभूति पर उतरती है तो भीतर का मैल छंटना शुरू होता है। कौतूहल के लिए, कोई क्यूरियोसिटी पूरी करने के लिए अंदर डुबकी नहीं लगानी है कि देखें अपने भीतर अपने बारे में क्या सच्चाई है। इस कौतूहल के मारे नहीं, हर कदम भीतर जाने का हर कदम हमारे मानस को निर्मल करता चला जाएगा, निर्मल करता चला जाएगा। समझेंगे किस प्रकार निर्मल करता है, पर इसीलिए डुबकी लगा रहे हैं, एक जिज्ञासु भाव से नहीं, मुमुक्षु भाव से मुक्त होना है। भीतर जो विकारों का बंधन है, काहे का बंधन है, हर आदमी चाहता है कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और हर जीवन में अनचाही बातों का होना, मनचाही बातों का न होना, अनचाही बातों का होना, मनचाही बातों का न होना, अरे कितना दुख है। इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इस पावन धरती पर जन्मे हुए एक महामानव ने इसी बात की खोज की। क्या इस भव चक्र के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? क्या इस दुख चक्र के बाहर निकलने का कोई विधि ही नहीं? जरूर होगी। जहां ये मृत है, जहां उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना ये स्वभाव है, वहां उसके विपरीत ऐसी अवस्था अवश्य होगी जो अमृत है। कुछ मरता ही नहीं, क्योंकि कुछ जन्मता ही नहीं, जहां जन्मे नहीं, जहां मरे नहीं, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो एक रस है, उसकी कल्पना करने से बात नहीं बनती, उसकी कामना करने से बात नहीं बनती, उसका साक्षात्कार करना होता है, और स्वयं साक्षात्कार करना होता है। नदी के इस तट पर रहने वाला कोई आदमी नदी के इस तट की सच्चाई तो अनुभूतियों से खूब जान गया, क्योंकि इस तट पर रहता है। कोई नदी पार करके उस तट पर गया और उसे देखकर वापस आया तो कहता है, अरे नदी का वो पार तो बड़ा सुहावना, बड़ा मनोरम, कोई मुकाबला नहीं इस पार से। तो उसके मन में कामना जागे कि नदी का वो तट जो इतना सुहावना है, जिन्होंने अनुभव किया है वो इतनी प्रशंसा करते हैं, तो उस तट की सुषमा को मैं भोगूं, उसका मैं दर्शन करूं। लेकिन करता क्या है, इसी तट पर बैठा हुआ हाथ जोड़ करके, दबदबाई आंखों से, रुंधे हुए कंठ से पुकारता है, प्रार्थना करता है, ए नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तेरा सुख भोगना चाहता हूँ। सारी जिंदगी प्रार्थना करता रह जाएगा, सारी जिंदगी रोता रह जाएगा, नदी का वो तट यहाँ आने वाला नहीं है, आ ही नहीं सकता। इस तट और इस तट के बीच में जो नदी बह रही है, अरे वो परम अवस्था, मुक्त अवस्था, वीतराग अवस्था, वीत द्वेष अवस्था, उसको कोई चाहे जिस नाम से पुकार के खुश हो जाए, कोई उसे आत्मा कह के खुश हो, कोई उसे परमात्मा कह के खुश हो, कोई उसे ईश्वर कह के खुश हो, कोई उसे मुक्ति मोक्ष निर्वाण कह के खुश हो, अरे नामों में क्या पड़ा है, वो एक अवस्था है जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है। और ये जो अवस्था है जिसमें जी रहे हैं, उन दोनों के बीच में नदी बह रही है, ये राग की नदी बह रही है, द्वेष की नदी बह रही है, विकारों की नदी बह रही है, इसको पार किए बिना उसका साक्षात्कार कैसे कर लेंगे? और जिस किसी को साक्षात्कार करना होगा, उसको स्वयं नदी पार करनी पड़ेगी। नदी कोई और पार कर ले और उस तट का दर्शन मुझे हो जाए, अरे कैसे होगा भाई, स्वयं पार करनी पड़ेगी। धर्म के क्षेत्र में मुक्ति के मार्ग पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, किसी की कृपा से बात बनती नहीं। इस आशा में सारा जीवन बिता दें कि किसी की कृपा हो जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा भव चक्र से, इससे बढ़कर पागलपन और क्या हो सकता है? क्यों भाई, किसी की कृपा मुझ पर ही क्यों हो जाएगी, सब पर क्यों नहीं होती? अगर उसकी कृपा सब पर हो जाए तो ये भव चक्र चले ही नहीं ना, सारे के सारे मुक्त हो जाए, मुझ पर ही क्यों होगी? क्योंकि मुझको खुशामद ज्यादा करनी आती है, झूठी प्रशंसा करनी आती है, इस मारे वो खुश हो जाएगा, अरे बेचारे का अमूल्यन कर दिया, डिवेल्यूएशन कर दिया, बात समझे ही नहीं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है, हर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत यही है कि दर्पण मांजत रहिए, जो दर्शन कीता चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्शन करना है, अपने बारे में क्या सच्चाई है उसका दर्शन करना है, इसके परी की अवस्था का दर्शन करना है, तो अपने मन के दर्पण को मांजते रहना पड़ेगा, साफ करता रहना पड़ेगा। उस पर मैल चढ़ा हो तो कोई प्रतिबिंब दर्शित ही नहीं होगा, कुछ नहीं दिखेगा, या जो दिखेगा वो भ्रांति पैदा करने वाला दिखेगा। चित्त को निर्मल करना ही मुक्त अवस्था है। जब तक चित्त के विकार नहीं निकले हम मुक्त कैसे हुए? मुक्ति काहे से है? विकारों से मुक्ति है। किसने हमको जंजीरों से बांध रखा है? किसने हमको हथकड़ियों से बांध रखा है कि बेड़ियों से बांध रखा है? अरे इन विकारों ने बांध रखा है। जब तक विकार है तब तक दुख ही दुख है। जब तक विकारों की जड़ है तब तक विकारों का संवर्धन होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। और जैसे ही ये विकारों की जड़ें निकली कि मुक्त हो गया, इसी जीवन में मुक्त हो गया। ये सारा काम अपने भीतर करना होता है, अपनी अनुभूति पर सच्चाई को उतारना होता है। राग कहाँ जागता है, द्वेष कहाँ जागता है, उन जड़ों तक पहुँचना होता है। ये ऊपर ऊपर से मानस को शांत कर लेना, ऊपर ऊपर से मानस को स्वच्छ कर लेना कल्याणकारी है, उसका अपना लाभ होता है, लेकिन उससे नितांत विमुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कोई पानी बहुत हिल रहा हो, मैला भी हो, हिल रहा हो, वो किसी प्रकार हिलना बंद हो जाए, शांत हो जाए, तो उसमें जो मैल है वो धीरे धीरे नीचे बैठता जाएगा, नीचे बैठता जाएगा, पैंदे में जाके बैठ जाएगा, और तब देखेंगे पानी बड़ा निर्मल हो गया, बड़ा पारदर्शी हो गया, बड़ा स्वच्छ हो गया। लेकिन मैल तो है ही, पैंदे में है, जैसे ही उसे कोई छेड़ देगा फिर ऊपर आ जाएगा, सारे पानी को फिर मैला कर देगा। पैंदे से, गहराइयों से मैल निकालना होगा, जड़ों से मैल निकालना होगा। और इस प्रदेश में जन्मे हुए उस महापुरुष ने यही विद्या खोज निकाली। वैसे बहुत पुरानी विद्या है, कोई नई बात नहीं खोजी, भूल गए थे लोग, जो बात भूल गए थे उसे इस महापुरुष ने खोज करके पहले अपना कल्याण किया, और फिर बड़े मुक्त हस्त से, बड़े करुण चित्त से लगे बांटने, लगे बांटने, न जाने कितनों का कल्याण किया, और कल्याण हुए ही जा रहा है, हुए ही जा रहा है। स्वयं अनुभूति पर उतारे तो कल्याण होता है, अन्यथा कोरी बातें करें तो कुछ बनता बनाता नहीं। आरंभ करने के लिए अवश्य श्रुत ज्ञान होता है, जो सुना हुआ ज्ञान है, जो पढ़ा हुआ ज्ञान है, धर्म के बारे में किसी से कोई बात सुनी तो श्रुत ज्ञान हुआ, उसके बाद उस पर चिंतन किया, मनन किया, उसे तर्क की कसौटी पर कस के देखा, उसे बुद्धि के तराजू पर तोल के देखा, और वो तर्क संगत लगा, युक्ति संगत लगा, तो उसे स्वीकार किया, तो उसे चिंतन ज्ञान कहा। श्रुत ज्ञान है, चिंतन ज्ञान है, दोनों बहुत काम के हैं, क्योंकि हमें प्रेरणा देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, पर जो लाभ होता है वो तीसरे से होता है, भावनामय प्रज्ञा। क्या भावनामय प्रज्ञा? किसको प्रज्ञा कहें? जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रज्ञा है, परोक्ष ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है, पढ़ा हुआ ज्ञान है, चिंतन किया हुआ ज्ञान है, उसकी अपनी सीमा होती है। प्रज्ञा की कोई सीमा नहीं होती, असीम है, सब कुछ जान जाएगा, सर्वज्ञता को जान जाएगा, प्रज्ञा जागे, भावनामय प्रज्ञा। घटना भवित हो रही है, घटना घट रही है और हम उसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, घटना घट रही है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक रास्ते चल रहे हैं। यों प्रज्ञा जगाते जगाते, अपनी अनुभूतियों वाला ज्ञान जगाते 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 प्रज्ञा में पुष्ट हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। उसी को स्थित प्रज्ञ कहा। ऐसा व्यक्ति जो प्रतिक्षण प्रज्ञा में है, कभी दुष्प्रज्ञ नहीं होता। जो सच्चाई भीतर है वही बाहर है, इन दोनों को अनुभूतियों से जानते हुए प्रज्ञा में स्थित रहता है, वो अनासक्त हो जाता है। इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाता है, संत हो जाता है, अरहंत हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, जिन हो जाता है। लेकिन उसके लिए स्वयं काम करना पड़ता है। एक उदाहरण से समझें, कभी कभी कोई बात उदाहरणों से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाती है। एक आदमी को बड़ी भूख लगी तो किसी रेस्टोरेंट में चला गया भोजन के लिए। रेस्टोरेंट में बैठने को स्थान मिला, बैरा आया, उसने मेनू का कार्ड सामने रखा। वो मेनू के कार्ड को पढ़ता है, ओ आज तो इस रेस्टोरेंट में, इस होटल में बहुत बढ़िया खाना बना है। मुंह में पानी आ गया पढ़ते पढ़ते, और फिर ऑर्डर देता है, मेरे लिए ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। अब आएगा तब आएगा, 5-10 मिनट तो लगेगी, तो बैठा हुआ प्रतीक्षा करता है। फिर इधर उधर नज़र घुमा के देखता है, और लोग बैठे हुए, उनका भोजन आ गया, भोजन कर रहे हैं। उनके चेहरे मोहरे को देख करके, उनके चेहरे के भाव को देख करके सोचता है कि जरूर आज का भोजन बहुत अच्छा है। भोजन बहुत अच्छा हो, स्वादिष्ट हो, तो खाने वाले के चेहरे पर एक संतोष का, एक सुख का कोई भाव आता है। इससे समझ में आई बात कि आज का भोजन बहुत ही अच्छा होगा। फिर मुंह में पानी आके रह गया। दो घटना घटी। अब तीसरी घटना घटी कि भोजन सचमुच सामने आ गया, परोस दिया गया और उसे खाने लगा। तो पहला श्रुत ज्ञान था, वो मेनू का कार्ड पढ़ा था, भोजन किया नहीं, केवल मेनू का कार्ड पढ़ा। दूसरा चिंतन ज्ञान था, बुद्धि के द्वारा सोच के देखा कि ये लोग जो भोजन कर रहे हैं, इनके चेहरे पर कैसे भाव हैं, बहुत संतुष्ट हैं तो भोजन अच्छा होगा, खुद नहीं चखा। और तीसरा भावनामय प्रज्ञा, स्वयं अनुभूति के द्वारा अपना ज्ञान जागा। तो भाई ये स्वयं अनुभूति के द्वारा ज्ञान जागे, ये हमें मुक्त करेगा। कल जो बात बताई कि मन को एकाग्र करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये जो तरीका ढूंढा गया कि अपने शुद्ध सांस को देखते चले जाओ, सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसकी कोई छेड़छाड़ मत करो, कोई प्राणायाम जैसा इस पर नियंत्रण करना शुरू मत कर दो, सांस की कसरत मत बना लो। इसे अपने आप, अपने स्वभाव से आपो आप निरंजन सोई, जो अपने आप हो रहा है बस वही निर्णय है, वही ईश्वर है, वही सत्य है। उस सत्य के सहारे 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 आगे चलना है। बाएं नासिका से गुजरे तो बाएं से, दाहिनी से गुजरे तो दाहिनी से, दोनों से गुजरे तो दोनों से। फिर स्पर्श हो रहा है तो स्पर्श भीतर हो रहा है कि बाहर हो रहा है कि नासिका के नीचे हो रहा है, बस उसी पर ध्यान रखे। ये घटना घट रही है, इस क्षण ये घटना घटी, सांस भीतर आया, इस क्षण ये घटना घटी, सांस बाहर गया, ये घटना घटी, सांस यहाँ छुआ, ये घटना घटी, सांस वहाँ छुआ, बस अपनी ओर से करना कराना कुछ नहीं। कीता न होई थापिया न जाई, ओ कीता न होई अपो आप निरंजन सोई। थापिया न जाई, कोई इम्पोज्ड ट्रुथ नहीं हो, कीता न होई कोई क्रिएटेड ट्रुथ नहीं हो, आर्टिफिशियल ट्रुथ नहीं हो, नेचुरल ट्रुथ, अपने आप जो हो रहा है, कोई थोपना नहीं, अपनी कोई मान्यता इस पर आरोपित नहीं करनी, और कोई शब्द इस पर आरोपित नहीं करना, और कोई कल्पना इस पर आरोपित नहीं करनी। शुद्ध सांस आ रहा है जा रहा है। और उस महापुरुष ने स्थान दिया नासाग्रे, ये जो नाश का अग्रभाग है यही। क्यों? तो वैसे तो समझाने के लिए कहते हैं कि ये शरीर के भीतर जाने की दहली है, जिस दरवाजे से अंदर जाना है पहले उस दरवाजे के पास खड़ा होना तो सीखें। पांव डगमगा रहे हैं, खड़ा ही नहीं हो पाते तो भीतर कैसे यात्रा करेंगे। तो 3 दिन तक यहां पर खड़ा होना सीख। लेकिन मुख्य बात क्या उसे समझें, ध्यान के लिए स्थान जितना छोटा होगा, ध्यान के लिए आलंबन जितना सूक्ष्म होगा, और ध्यान के लिए उस आलंबन पर हमारा मन जितनी देर तक टिकेगा, हमारा मन उतना ही सूक्ष्म 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 होता चला जाएगा। ये कुदरत का नियम है, उतना ही तीक्ष्ण तीक्ष्ण होता चला जाएगा। हमने किसी बहुत बड़े स्थान पर अपना मन टिकाया तो मन भी स्थूल रह जाएगा, वो सूक्ष्म हो नहीं पाएगा, बींधने वाली प्रज्ञा का काम नहीं कर पाएगा, वो ऊपर ऊपर की जानकारी करके रह जाएगा। इसलिए छोटा सा स्थान दिया गया। और सांस अपने आप जब मन टिकने लगता है तो अपने स्वभाव से धीमा होते होते सूक्ष्म होते होते इतना छोटा हो जाता है कि जैसे बाहर आया कि वैसे भीतर गया, यहीं यू टर्न कर लेगा, बाहर आया फिर भीतर गया, बाहर आया फिर भीतर गया, इतना छोटा इतना सूक्ष्म हो जाएगा, इतना धीमा हो जाएगा। कभी कभी तो यूं लगेगा जैसे कुंभक लग गई। ये स्वतः कुंभक, वो जोर जबरदस्ती वाली कुंभक कल्याण नहीं करेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में कल्याण नहीं करेगी, शरीर के रोगों को निकालने के लिए अवश्य बहुत कल्याणकारी है। यूं देखते 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 चित्त इसी स्थान पर कुछ देर टिकने लगा तो एक और घटना घटनी शुरू हो गई। किसी किसी को दूसरे दिन, किसी किसी को तीसरे दिन, क्योंकि वहां शिविर में आने पर और कोई प्रवृत्ति तो होती नहीं, रात दिन यही काम करना है। जितनी देर विश्राम करने का भोजन करने का समय है उतना छोड़ करके, रात को सोने का समय है उसे छोड़ करके, बाकी समय अपनी ओर से कोशिश करेंगे यहीं रहें। मन भागता है फिर ले आए, मन भागा फिर ले आए, ऐसे करते करते दूसरे दिन तीसरे दिन सारा का सारा मार्ग सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्मता की ओर, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, ऐसे सूक्ष्मता की ओर बढ़ता चला जाएगा। सुखुमा 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 सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, तो सांस भी सूक्ष्म होता गया सूक्ष्म होता गया, मन बड़ा शार्प होता चला गया, बड़ा पेनिट्रेटिंग होता चला गया। तो देखिएगा इतनी सी दूरी में कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई ना कोई जीव रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सारे शरीर में हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। कोई धड़कन सी हो सकती है, कोई फड़कन सी हो सकती है, कोई सिहरन सी हो सकती है, कोई खुजराहट सी हो सकती है, कोई गुदगुदाहट सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, गर्मी सी हो सकती है, सर्दी सी हो सकती है, भारीपन सा हल्कापन सा, कुछ न कुछ अनुभूति होने लगी। वो प्रतीक्षण होती रहती है, क्योंकि हमारा मन इतना स्थूल है कि जब ये संवेदनाएं बहुत तेज हों, जोर की खुजली आए तो पता लगता है खुजली आई, जोर की पीड़ा हो तो पता लगता है, अन्यथा सूक्ष्म स्तर पर बहुत कुछ होते रहता है, सारे शरीर में बहुत कुछ होते रहता है। जहां जहां जीवन है वहां वहां, जहां जीवन नहीं है वहां कुछ नहीं होता। जैसे ये बाल आगे आ गए, मर गए, अब मृत है, चाहे जितना काटो कोई अनुभूति नहीं होगी। इसी तरह से नाखून आगे आ गए, मर गए, अब उनको चाहे जितना काटो कोई अनुभूति नहीं होगी। बाकी जहां जहां प्राण है, जहां जहां जीवन है, वहां वहां संवेदना है ही, सेंसेशन है ही, कुछ न कुछ अनुभव होता ही है। लेकिन हमारे मानस को, ऊपर ऊपर वाले मानस को, क्योंकि वो बड़ा स्थूल है, बड़ा स्थूल है, इसलिए उसे मालूम नहीं हो रहा कि भीतर क्या हो रहा है। ये तीन दिन की मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि मन को बड़ा शार्प कर लें, बड़ा तीक्ष्ण कर लें, बींदता हुआ, पियर्सिंग, पेनिट्रेटिंग, ताकि और अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएं। होनी शुरू हुई कि चौथे दिन से देखेगा सिर से लेके पांव तक चक्कर लगाते हुए सारे शरीर में, सारे शरीर में कहीं कुछ, कहीं कुछ खदबद 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 कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भारीपन है, कहीं हल्कापन है, कहीं गर्मी है, कहीं पसीना है, कहीं दुखाव है, कहीं सुरसुराहट है, कहीं झंझनाहट है, कहीं धड़कन है, कहीं फड़कन है, कहीं सेरन है, कहीं पुलकन है, कुछ न कुछ हो ही रहा है। किसी किसी को काम शुरू करते ही सारे शरीर की अनुभूति होने लगी, किसी किसी को पहले दिन कम हुई, दूसरे दिन ज्यादा होने लगी, तीसरे दिन यूं होते होते सर्वत्र मालूम होने लगा कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। एक बहुत बड़ी जीत हुई। तो पहला ज्ञान जागा कि जहां देखो वहीं उदय होता है, व्यय हो जाता है। गर्मी आई तो अनंत काल तक नहीं रही, आई और चली गई, पसीना आया आया और चला गया, भारीपन आया आया और चला गया, धड़कन आए कि फड़कन आए कि सिहरन आए कि पुलकन आए, सबका स्वभाव यही है, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय। बड़े धीरज के साथ देखता जा रहा है, भोक्ता भाव से नहीं, कर्ता भाव भी नहीं, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से घटना घट रही है और उसे जान रहा है। जैसे कि आगे जाकर तो ये हो जाएगा, घटना घट रही है और उसे जाना जा रहा है, जान रहा हूँ, ये भी समाप्त हो जाएगा, जाना जा रहा है, घटना घट रही है, जाना जा रहा है। यूं देखते देखते सच्चाई देखना है, उस पर कल्पना जरा सी भी नहीं आने पावे। सारा मार्ग आदि सच, जुगादि सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। जो सच के सहारे सारे चलेगा वो सारे सच खंड की यात्रा कर लेगा, सारे सच खंड की यात्रा करता हुआ सच नाम हो जाएगा। भगवान बुद्ध का एक नाम था सच नाम। क्या सच नाम होता है? भाषा बदल जाती है, अर्थ बदल जाते हैं। उन दिनों की भाषा में नाम कहते थे चित्तधारा को, जिसकी चित्तधारा इतनी सत्य में समा गई कि कोई असत्य उसमें जाग ही नहीं सकता, हर क्षण सत्य के साथ रहने वाला व्यक्ति सच नाम हो जाता है। इस रास्ते चलने वाला हर व्यक्ति सच नाम हो जाएगा। सच नाम हो जाएगा तो निर्भय हो जाएगा, निर्भैर हो जाएगा, ऐसा निर्मल हो जाएगा कि किसके साथ बैर करे, मैत्री ही मैत्री, करुणा ही करुणा, किससे भय करे, निर्भय हो गया। धम्मो हवे रखति धम्मचारी, अपने आप निर्भय हो गया। ये सारी अवस्थाएं किसी के कहने से नहीं मान लेनी, कोई गुरु महाराज कहता है इसलिए मान रहे हैं, किसी बुद्ध ने कहा इसलिए मान रहे हैं, किसी महावीर ने कह दिया इसलिए मान रहे हैं, कि कोई गीता कहती है, कि बाइबल कहती है, कि कुरान कहती है, तो मान के ही रह जाओगे, बस सारा जीवन मानने में बीत जाएगा, जानने का काम कर ही नहीं पाओगे। जानना है, जो कुछ दूसरे को अनुभव हुआ मैं करके देखूं, मुझे क्यों नहीं अनुभव होगा, मैं भी अंतर्मुखी होकर के इस सारे शरीर का सर्वेक्षण करूंगा तो मुझे भी अनुभूति होनी चाहिए। कोई मार्गदर्शक शुरू में पहले 10 दिनों के लिए कोई मार्गदर्शक आवश्यक है, अन्यथा गलत तरह का कोई कदम उठा ले और उससे हानि कर ले, किसी ऐसे रास्ते चला जाए उसमें से निकालना मुश्किल हो जाए। अपने मन के ऑपरेशन का काम है, बहुत गहरा ऑपरेशन करना पड़ता है, तो किसी जानकार के साथ रहकर ही पहले 10 दिन का ऑपरेशन करना चाहिए, उसके बाद हर आदमी अपना मालिक है। धर्म में कोई गुरुडम नहीं होता, किसी गुरु के चंगुल में, किसी गुरु के दबाव में कभी नहीं रहना। अत्ता ही यत्तनोनाथ हो, स्वयं अपना मालिक बनना है वही व्यक्ति मुक्त होगा, जो अपना मालिक नहीं बन सका वो मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रारंभ में गाइडेंस लेने के लिए ठीक, उसके बाद खुद अपना काम करना है। काम यही करना है, अपने भीतर की सच्चाई को तटस्थ भाव से जानना है। कोई संवेदना अच्छी लगी, सुखद लगी तो चाहिए चाहिए नहीं करने लगना, उसके प्रति राग नहीं जगाना। कोई दुखद लगी तो उसके प्रति द्वेष नहीं जगाना। बार बार जागेगा ध्यान करते हुए, ध्यान शुरू करते ही तो कोई अरहंत नहीं हो जाता। आरंभ में तो यही होता है, पुरानी आदत है, ध्यान करते हुए कहीं पीड़ा जागी, हाय रे मरा रे, ये पीड़ा अभी तक नहीं गई रे, ये जल्दी चली जाए रे, अब तक नहीं गई रे, अब तक नहीं गई रे, यो द्वेष करेगा उसके साथ, द्वेष करेगा। बीच बीच में होश आएगा, अरे हमारी आदत मन की देखी ना, कि जहाँ अप्रिय अनुभूति होती है वहीं द्वेष करता है। ऐसे ही कभी कभी बड़ी सुखद अनुभूति भी होगी, होगी ही, तो सुखद अनुभूति आती, बस मिल गया, यही तो हम खोज रहे थे, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, ये तो बार बार आवे, ये तो बार बार आवे, राग पैदा करने लगेगा, तो होश आएगा। देख मन का कैसा स्वभाव, सुखद अनुभूति होती है तो राग पैदा करता है, दुखद अनुभूति होती है तो द्वेष पैदा करता है, कैसा स्वभाव हो गया इसका। अनेक जन्मों से यही स्वभाव चल रहा है, और जब तक ये स्वभाव चल रहा है तब पर विकार पर विकार, विकार पर विकार, जितने भी विकार हैं उन सब के जनक जननी ये राग और द्वेष, ये दो हैं। इन दो की वजह से सारे विकारों की उत्पत्ति होती है, और ये राग और द्वेष, और राग और द्वेष तो गहराइयों तक यही है, यही है। लेकिन उसको जैसे जैसे समता से देखना सीखेगा, पहले तो एक घंटे की बैठक में मान लो कि थोड़े से सेकंड ऐसे मिले, अरे थोड़े से सेकंड तो मिले जहां समता से देख रहा है, ये तो अनित्य है भाई, सुखद है तो भी अनित्य है भाई, दुखद है तो भी अनित्य, अनित्य इसलिए नहीं मानना कि बुद्ध ने कहा है, कि गुरु महाराज ने कहा है, कि हमारा शास्त्र कहता है, कि त्रिपिटक कहता है, कि कि आगम कहता है कि गीता कहती है, नहीं नहीं नहीं, अनुभूति से जानना है और तब मानना है, अनुभूति से जानना है और तब तो कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यूं देखते 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 हम चित्त का पैटर्न बदल रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न बदलना शुरू हो गया। माइंड का ऐसा एक बिहेवियर पैटर्न बन गया था, अनेक जन्मों से बन गया था, कोई अनेक जन्म को न माने तो न माने, इस जन्म में ही जन्मने के साथ ही ऐसा पैटर्न बनता चला गया कि सुखद लगा कि राग पैदा किया, दुखद लगा कि द्वेष पैदा किया। अब उस पैटर्न को बदलना है। सुखद लगे तो भाई देखें तो सही, ये कितनी देर तक रहता है, देखते देखते समाप्त हुआ तो क्या राग करें, जो अपने आप समाप्त हुए जा रहा है उसके प्रति क्या राग करें। ऐसे ही दुखद लगा तो देखे तो सही कब तक दुखद रहता है, देखते देखते समाप्त हो जाएगा। अरे जो अपने आप समाप्त हो रहा है उससे क्या द्वेष करें। यूं अपना स्वभाव पलटने का काम शुरू होगा। बस जब तक ये राग और द्वेष का स्वभाव दृढ़ है तब तक मैल ही मैल, मैल ही मैल, विकार पर विकार, विकार पर विकार। और जैसे जैसे ये स्वभाव पलटना शुरू हुआ, मैल निकलना शुरू हुआ, मैल निकलना शुरू हुआ। उसको देखना सीखे, देखना आ गया कि मुक्ति का रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा, अपने आप खुलता चला जाएगा। इसीलिए जिन्होंने अनुभव किया उन संतों की वाणी बड़ी कल्याणकारी, अनुभव में से गुजरे तो समझ में आवे। एक संत कहता आपने यहाँ कि घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। घूंघट का एक पट नहीं है, घूंघट के पट, न जाने कितने पट, न जाने कितने अवगुंठन, उस परम सत्य की अवस्था पर कितने अवगुंठन, कितने पर्दे लगाए चल रहे हैं। इस साधना द्वारा उतरता चला जाएगा, एक पर एक पर्दा उतरता चला जाएगा, उतरता चला जाएगा। जिस समय सारे पर्दे उतर जाएंगे तो उसके भी पीछे की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। पर्दे के उस पार हमें देखना है, लेकिन पर्दा कायम है, हम कैसे देखेंगे। साक्षात्कार किसको कहते हैं कि जिसका साक्षात्कार होना है या हो रहा है उसके और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं हो तो साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार कैसा, तो जब तक ये विकारों का पर्दा कायम है तब तक परम सत्य का साक्षात्कार होता नहीं। तो उसको दूर करने की जैसे जैसे समता से देखे जाएंगे दूर होगा, दूर होगा, दूर होगा। एक समय ऐसा आएगा ध्यान करते करते, किसी किसी को पहले 10 दिन के शिविर में आ जाता है, किसी को पहले में नहीं आता, दूसरे में आता है, तीसरे में आता है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग इकाई है, ऐसा कोई बंधा बंधाया नियम नहीं है कि इतने दिनों के बाद ये होना ही चाहिए, होता है। लेकिन एक अवस्था आती है कि जब शरीर की सारी सघनता नष्ट हो जाती, उसमें कोई भी सॉलिडिटी नहीं रह जाएगी, ऊपर ऊपर से सॉलिड लगता है सारा शरीर, बड़ा ठोस लगता है, लेकिन बार 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 ध्यान करते करते वो सघनता टूटनी शुरू होगी। टूटते 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 वो ऊपर ऊपर की सच्चाई है कि शरीर बड़ा सघन है, बड़ा ठोस है। अंदर की सच्चाई ये है कि सारा का सारा शरीर नन्हे नन्हे परमाणु कणों से बना है, और वो परमाणु कण उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। ये जो नन्हे से नन्ना परमाणु कण, भगवान ने उसे कहा कलाप, माने भौतिक जगत की छोटी से छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म सच्चाई, टुकड़े करते गए, टुकड़े करते गए, विभाजन करते गए, विघटन करते गए, विश्लेषण करते गए, और एक अवस्था पर पहुंच गए, अब और विश्लेषण नहीं हो सकता, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे कलाप कहा। आज के साइंटिस्ट की भाषा में उसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहें। तो सारा का सारा शरीर उन सब एटॉमिक पार्टिकलों से बना है, कलापों से बना है। ये कोई साइंटिस्ट कहता है इसलिए हम मान लें तो हमें क्या मिलेगा, कोई बुद्ध कहता है इसलिए मान लें हमें क्या मिलेगा। अनुभव पर उतरना है और अनुभव पर उतरेगा ही। इस रास्ते चलते 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 सारा शरीर केवल एटॉम्स एटॉम्स एटॉम्स, और वो एटॉम भी कोई ठोस पदार्थ नहीं है, हर एटॉम तरंग ही है, केवल तरंग है। इस अवस्था को देख करके हमारे इस देश का महान साइंटिस्ट, बुद्ध के जैसा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ दुनिया में, कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ, मानव जाति ने अब तक ऐसा वैज्ञानिक नहीं पैदा किया कि जिसने भीतर की सच्चाइयों को अनुभूतियों के स्तर पर जाना। अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बल पर, चिंतन के बल पर कोई आदमी कहे मैं जान गया, जाना वाना नहीं, बुद्धि से मान रहा है केवल। इस व्यक्ति ने साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से भीतर की सच्चाई को अनुसंधान करते 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 अंतिम सत्य तक जा पहुंचा।
तो भौतिक जगत का अंतिम सत्य क्या है? परमाणु ही परमाणु, और वो भी केवल तरंगे ही तरंगे। ऐसे ही चित्त का विश्लेषण करने लगा, उसे देखने लगा। हर व्यक्ति देख सकता है, केवल बुद्ध ने देखा ये अनोखी बात नहीं हुई। बुद्ध ने देखा ये अनोखी बात इस माने में हुई कि ये विद्या लुप्त हो चुकी थी। बहुत पुरातन विद्या, न जाने कितने बुद्ध हुए पहले, बहुत पुरातन विद्या लेकिन लुप्त हो चुकी थी। इस व्यक्ति ने खोज निकाली उसे, और फिर अनुसंधान करते 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 बात समझ में आ गई कि सारा का सारा भौतिक जगत केवल कलापों का पुंज है और कुछ नहीं। ऐसे ही मानस को देखा तो बड़ा ठोस मालूम होता है मानस भी। शुरू में कोई भावावेश आया, कोई क्रोध आया, कोई वासना आई, तो कितनी घनीभूत होकर के आती है, सॉलिडिफाइड होकर आती है, इंटेंसिफाइड होकर आती है। इस विद्या से उसको देखना सीखा। क्रोध आया, बड़ा घनीभूत होकर के आया, उसे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, उसके टुकड़े होने लगे टुकड़े होने लगे, आ रहे तरंगे ही तरंगे। वो नन्ना सा परमाणु कण भी तरंगे ही तरंगे और कुछ नहीं, और ये मानस भी केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं, तरंगे ही तरंगे। तो घोषणा करते हैं, सब्बो पज्जलितो लोको, सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो। मानव जाति के उस महान साइंटिस्ट ने, महान वैज्ञानिक ने सच्चाई अनुभूति से देखी, केवल तरंग ही तरंग है सारे विश्व में, सारे लोकों में, और कुछ नहीं है, तरंगे ही तरंगे। विस्फोट होता है, तरंग होती है, विस्फोट होता है, तरंग होती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये बात अनुभूति से जानी। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को 100 बरस पहले स्वीकार करने लगे कि देर इज नो सॉलिडिटी इन द मटीरियल वर्ल्ड, मियर वेवलेट्स वेवलेट्स वेवलेट्स। लेकिन उन्होंने जो स्वीकार किया वो अपने बुद्धि के बल पर स्वीकार किया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बल पर स्वीकार किया। और ये महापुरुष अपनी अनुभूति के बल पर, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट अपने आप का मन ही है, स्वयं इंस्ट्रूमेंट है, और उसके जरिए सच्चाई जानी। प्रकंपन प्रकंपन प्रकंपन, सारा का सारा शरीर प्रकंपन प्रकंपन, सारा का सारा चित्त प्रकंपन प्रकंपन, चित्त पर जो वृत्तियां आती हैं चित्त वृत्ति प्रकंपन प्रकंपन। इस अवस्था पर जब आदमी पहुंच जाता है, और पहुंच ही जाता है, कोई अनोखी बात नहीं है, काम करना पड़ता है, मेहनत करे तो हर साधक पहुंच जाएगा उस अवस्था पर, तब बात और समझ में आने लगती है। आगे जाकर तो उस अवस्था पर पहुंचेगा कि चित्त के भी टुकड़े करते 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 ओ 121 प्रकार के चित्त हैं। ये अनुभूति पर उतरेगा, 121 प्रकार के चित्त अनुभूति पर उतर जाएंगे, 52 प्रकार के चित्त वृत्तियां अनुभूति पर उतर जाएंगी, 121 प्रकार के चित्त, 52 प्रकार के चित्त वृत्तियां। आज तो हम उनकी गिनती ही भूल गए, उनके नाम ही भूल गए, क्योंकि ये विद्या समाप्त हो गई हमारे यहाँ से। अंदर देखना शुरू करोगे तो खूब समझ में आएगा, ऊंची अवस्था है, डॉक्टरेट करोगे तब आएगा, किंडरगार्टन में नहीं आया करता। किंडरगार्टन में तो बात शुरू करते बड़े ABCD सीखोगे, तो पहली ABCD क्या होगी कि इस मानस के 4 मोटे मोटे खंड, वो 4 खंड अनुभूति पर उतरने शुरू हो जाएंगे। क्या 4 मोटे मोटे खंड? देखिएगा सब जगह तरंगे ही तरंगे ही तरंगे ही तरंगे ही तरंगे ही तरंगे। आंख पर मन गया तरंगे ही तरंगे, कान पर मन गया तरंगे ही तरंगे, नाक पर मन गया तरंगे ही तरंगे, जीभ पर मन गया तरंगे ही तरंगे, शरीर की त्वचा पर मन गया तरंगे ही तरंगे। ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 दरवाजे हैं, इसीलिए इनको आयतन कहा। 5 दरवाजे हैं जिनकी वजह से दुनिया हमारे लिए दुनिया है। जिसके पास ये नहीं हो उसके लिए दुनिया नहीं है। जो आदमी जन्म से बहरा है उसके लिए शब्द की कोई दुनिया ही नहीं, समझेगा ही नहीं शब्द क्या होता है। जो आदमी जन्म से अंधा है उसके लिए रूप की कोई दुनिया ही नहीं, समझेगा ही नहीं क्या रूप होता है, क्या रंग होता है, क्या रोशनी होती है, जन्म से अंधा है। तो ये इंद्रियां हैं, इसलिए दुनिया हमारे लिए दुनिया है, ये सारा लोक हमारे लिए लोक है। तो इन लोक से संपर्क करने के लिए ये 5 दरवाजे प्रकृति ने हमें दिए। तो इन पर क्या घटना घटी? घटना घटी, समाप्त हो गई, तब 6ठा दरवाजा अपना काम करता। मन भी अपने आप में एक दरवाजा है। जो अनुभव पहले हुआ आंख के दरवाजे से हुआ, कि कान के दरवाजे से हुआ, कि नाक के दरवाजे से हुआ, कि जीभ के दरवाजे से हुआ, कि त्वचा के दरवाजे से हुआ, उसका चिंतन करेगा, ओ ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, और फिर चिंतन करेगा ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। तो ये 5-6ठा दरवाजा बड़ा महत्वपूर्ण दरवाजा है ये भी। ये 6 दरवाजे, इन्हीं को पुरानी भाषा में कहा सलायतन, 6 दरवाजे हैं ये, इन्हीं से सारा काम होता है हमारा। तो देखेगा सब जगह तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है। एक शब्द आया,
कान से टकराया तो अच्छा साधक होगा, देखेगा जो शब्द आया वो भी तरंग ही है, रूप कोई आकृति आंख से टकराई तरंग ही है, कोई गंध नाक से टकराई तरंग ही है, कोई रस जीभ से टकराया तरंग ही है, कोई स्पर्शव्य पदार्थ त्वचा से टकराया तरंग ही है, कोई चिंतन मानस से टकराया तरंग ही है। अरे ये छह इंद्रियां भी तरंग हैं, इन छह इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी तरंग हैं। तो देखता है कान में कोई शब्द आया तो तरंग से तरंग टकराई, तरंग से तरंग टकराते ही एक नई प्रकार की तरंग शुरू हो गई, जैसे कांसे के बर्तन को छेड़े, छेड़ते ही उसमें एक नई तरंग शुरू हो गई, और कांसे के बर्तन को जहां छेड़ा वहीं नहीं हुई, सारे के सारे कांसे के बर्तन में तरंग हो गई। तो शब्द आया कान पर और तरंग उठी सारे शरीर में, सारा शरीर झंझना उठेगा। किस प्रकार की तरंग है? न्यूट्रल तरंग है, इस वेव लेंथ की है कि उस वेव लेंथ की है, इस फ्रीक्वेंसी की है कि उस फ्रीक्वेंसी की है, उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन तरंग है। इतने में मानस का एक हिस्सा सिर उठाएगा, अपने यहां की पुरानी भाषा में, 2500 वर्ष की पुरानी भाषा में उसे विज्ञान कहते थे, विज्ञान कहते थे, आज तो विज्ञान का अर्थ साइंस हो गया, हमें शब्दों से लेना देना नहीं। मानस का वो हिस्सा जो कॉग्नाइज करता है कि कुछ हुआ भाई, ऐसा जानता है कुछ हुआ, देखो कान के दरवाजे पे कुछ खटपट हुई, ऐसे आंख के दरवाजे पे खटपट हुई, कि कभी नाक के दरवाजे पे खटपट हुई, कभी जीभ के दरवाजे पे खटपट हुई, कभी त्वचा के दरवाजे पे खटपट हुई, कभी मन के दरवाजे पे खटपट हुई, कुछ हुआ। बस उसका इतना ही काम है कि वो कह देगा कुछ हुआ, इतने में मानस का दूसरा खंड अपना सिर उठाएगा। पुरानी भाषा में उसे संज्ञा कहा, हमें शब्दों से लेना देना नहीं। मानस के उस दूसरे खंड का काम क्या है? उसका काम पहचानना है कान में शब्द आए, अरे ऐसे शब्द पहले भी सुने थे, क्या शब्द हैं ये? ओ ये गाली के शब्द हैं, पहचान लिया गाली के शब्द हैं, ऐसा पहले भी सुना हुआ होगा। ये प्रशंसा के शब्द हैं, उस दूसरे खंड का काम पहचानना है गाली है कि प्रशंसा है, और रूप हो तो पुरुष है कि नारी है, कि सुंदर है कि असुंदर है, गंध हो तो सुगंध है कि दुर्गंध है, ये उसका काम पहचानने का। केवल पहचान के नहीं रह जाएगा, मूल्यांकन भी करेगा। क्या मूल्यांकन करेगा? अरे जो गाली है ना ये तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, मुझे कोई गाली देता है जरा भी अच्छा नहीं लगा। प्रशंसा है, आ ये तो बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, प्रशंसा है ना। वो बावला, मानस का बावला हिस्सा पहचानने का काम करता है, मूल्यांकन करने का काम करता है। इतने में एक तीसरी घटना घटनी शुरू होती है। ये सारा काम तब होगा जबकि वैज्ञानिक की तरह, एक शोध वैज्ञानिक की तरह, एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह अपने भीतर सच्चाई की खोज कर रहे हैं, अपने भीतर कल्पनाएं कर रहे हैं, हमारी ऐसी मान्यता, हमारी परंपरा की ऐसी मान्यता, ऐसी कोई आत्मा होती है, ऐसा कोई परमात्मा होता है, नहीं 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 होती, आत्मा बिल्कुल नहीं होती, परमात्मा बिल्कुल नहीं होता, मान्यता ही मान्यता हुई ना भाई, क्या मिलेगा? कल्पना ही कल्पना हुई ना, तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही है, तुम्हें जो अनुभूति हो रही है। वैज्ञानिक का काम यही कि जो कुछ सामने आया उसके टुकड़े कर करके, टुकड़े कर करके उसकी सच्चाई की गहराई में गया, वो देख पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस काम में लगने वाले को अपनी परंपरागत मान्यता की निंदा नहीं करनी, होगी भाई हम लोग माने जा रहे हैं परंपरा से, वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त तो मुझको एक वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर अनुसंधान करना है। इसलिए जो सच्चाई सामने आई उसे देखता गया तो समझ में आता चला जाएगा। इस मानस के तीसरे हिस्से ने जैसे ही मूल्यांकन किया कि पहले जो न्यूट्रल तरंग चली थी सारे शरीर में, उसने मूल्यांकन किया गाली है, बहुत बुरी है, तो देखेगा कि सारे शरीर में बड़ी दुखद तरंगे, दुखद तरंगे, दुखद तरंगे, और इसने मूल्यांकन किया ये तो प्रशंसा है, अरे बहुत अच्छी है, तो देखेगा सारे शरीर में जो तरंगे चल रही हैं बड़ी सुखद तरंगे, बड़ी सुखद तरंगे। ये मानस का तीसरा हिस्सा जिसका काम संवेदनशील होना है, ये वेदना का अनुभव करने लगा। इतने में मानस का चौथा हिस्सा अपना सिर उठाएगा। ये चार मोटे मोटे खंड, इनका जब अनुभव होने लगेगा तो और गहराइयों की बात समझ में आने लगेगी। ये चौथा खंड, चौथा खंड उन दिनों की भाषा में उसे संस्कार कहा, क्योंकि बार 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 जो काम किया जाता है तो क्या बार बार काम करता है। ये सुखद संवेदना चली तो चाहिए चाहिए, बड़ा अच्छा लगा,
अरे बड़ा अच्छा लगा, दुखद संवेदना चली, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो बहुत बुरा लगा, तो बहुत बुरा लगा, ऊपर ऊपर से यूं समझता है गाली है ये बहुत बुरी लगी मुझे, ये प्रशंसा ये बहुत अच्छी लगी मेरे, भीतर जाएगा तो गाली अच्छी नहीं लगी, बुरी नहीं लगी, प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, ये संवेदना अच्छी या बुरी लगी, संवेदना सुखद थी तो अच्छा लगा, संवेदना दुखद थी तो बुरा लगा, ऐसा अपनी अनुभूति पर बात उतरनी शुरू हो जाएगी। यूं जब उतरनी शुरू हो जाएगी तो होश आना शुरू होगा कि ये जो मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं संस्कार की, राग की कर रहा हूं, द्वेष की कर रहा हूं, देख कितना व्याकुल हो जाता हूं, जैसे ही राग जगाता हूं तब भी व्याकुल हो जाता हूं, द्वेष जगाता हूं तब भी व्याकुल हो जाता हूं, और न जगा के देखूं, नहीं जगाता तो बड़ा शांत रहता है, तो भीतर तक शांति आनी शुरू हो जाती है, भीतर तक निर्मलता आनी शुरू हो जाती है, उखड़ते हैं न जाने कितने जन्मों के संस्कार, उखड़ते हैं चले जाते हैं, उपज्जित्वा निरुज्झन्ति, उपज्जित्वा निरुज्झन्ति, बहुत क्रोध करने वाला आदमी ये साधना करते 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 देखेगा उसका क्रोध कम हुए जा रहा है, कम हुए जा रहा है, छुटकारा हुए जा रहा है, बहुत वासना में डूबा हुआ व्यक्ति वासना कम हुए जा रही है, और ये काम करते 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 देखेगा कि हृदय प्रदेश पर बाकी तो सारा शरीर प्रकंपन ही प्रकंपन, तरंगे ही तरंगे, हृदय प्रदेश पर एक छोटा सा स्थान है वो बड़ा ठोस लगता है, गहराई में जाएगा तो लगेगा बड़ा ठोस है ये तो, अरे बड़ा ठोस है, तो जिसने गाड़ी वहीं ख़त्म कर दी अपनी, आगे नहीं चला, वो बीच के धर्मशाला में रुक गया, उसने वो ठोस जगह देखी अंगूठे की जितनी बड़ी, तो कहा अंगुष्ट प्रमाण अंगूठे की जितनी जगह वह तो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, वो मेरी आत्मा है। लेकिन जिस आदमी ने काम चालू रखा उसको देखता ही गया तो टुकड़े टुकड़े होने लगे उसके अंगूठे की जितनी बड़ी जगह, जो बड़ी ठोस मालूम होती थी गहराइयों में, उसके टुकड़े होने लगे, टुकड़े होने लगे, टुकड़े होने लगे, तरंगे तरंगे तरंगे, एक तिल जैसा रह गया। अब वो तिल इतना ठोस है कि यूं लगता है कि बस अंतिम अवस्था प्राप्त हो गई। कैसे ये भिन्न भिन्न प्रकार की फिलॉसफीज बनी ये सारा समझ में आएगा। तिल जैसी, तो ये नित्य शाश्वत ध्रुव तिल जैसा है। समझदार आदमी होगा, अभी उसे और अनुसंधान करना है, उसी को देखे जाएगा कि देखें तो ये कितनी देर स्थिर रहता है। देखते 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 उसके भी टुकड़े होने लगे, टुकड़े होने लगे। छिंदती हृदय ग्रंथि, ये हृदय ग्रंथि छिंदती, टुकड़े हो गए इसके, छिंदती हृदय ग्रंथि भिंदंती सर्व संशय, सारे संशय समाप्त हो गए क्योंकि इसके परे की अवस्था का साक्षात्कार हो गया। तो किसी ने कहा कि ठाकुर मिल गया ओ तिल योले, मन मगन भया अब क्या बोले, ठाकुर मिल गया तिल ओले, ये नन्ना सा तिल, ये टूटता है तो इसके पीछे ये पर्दा है, इसके पीछे परम सत्य का साक्षात्कार होता है। उसे कोई ठाकुर कहे, उसे कोई साईं कहे, उसे कोई नाथ कहे, उसे कोई परमात्मा कहे, उसे कोई निर्वाण कहे, अरे नाम चाहे सो देना, बोल नहीं पाएगा क्या नाम देगा, कि ठाकुर मिल गए तिल ओले, मन मगन भया अब क्या बोले, ओ सुरत कलारी भाई मतवारी, ओ मधुआ पी गई बिन तोले, मन मगन भया अब क्या बोले, हीरा पाया गांठ गंठियाया, ओ बार बार उसको क्या खोले, ठाकुर मिल गया तिल ओले, मिलना चाहिए ना, केवल बातें करने से क्या होगा। तो वहां तक पहले तिल की अवस्था तक पहुंचे तो सही, फिर उस तिल का भेदन हो तो अपने आप मिल ही जाएगा, क्या मिल जाएगा कोई बता नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। गूंगे कीरी शर्करा, चाख चाख मुस्काये, गूंगे कीरी शर्करा, गूंगा आदमी है उसके मुंह में शक्कर रख दी, मीठी तो बहुत लगी, अब क्या बोले बेचारा, कैसे समझाए कितनी मीठी है, तो बस मुस्कराता है, इतना ही होगा वो अवस्था प्राप्त होने वाला, बोलेगा नहीं कुछ, कैसी अनुभूति हुई, बोल ही नहीं पाएगा। जो बोलता है उस परम अवस्था के बारे में, जो बोलता है समझ लेना चाहिए, इसको अनुभूति नहीं हुई, ये कल्पना कर रहा है, ये बुद्धि विलास कर रहा है, इसको अनुभूति नहीं हुई, जो अनुभूति हो गई वो बोल ही नहीं पाएगा। अनुभूति हुई भाई तू भी करके देख, इस रास्ते अनुभूति हो जाती है तू भी करके देख, क्या बोलेगा कैसे बोलेगा, ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा परमात्मा है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये मोक्ष है, ये निर्वाण है, ये मुक्ति की अवस्था, क्या बोलेगा, उसका अनुभव कैसे बताएगा, कैसे अनुभव बताएगा। ये जो इंद्रिय जगत की अनुभूतियां हैं वो जब बहुत सूक्ष्म अवस्था में अनुभूतियां होती हैं उनके लिए भी कोई शब्द नहीं मिलते, भाषा कंगाल हो जाती है। कोई संसार में ऐसी भाषा नहीं जो उसको समझा सके कि हमें क्या अनुभूति हुई, अच्छा लगा, अब अच्छे क्या परिभाषा, किसी को कुछ अच्छा लगा, किसी को कुछ अच्छा लगा, सुखद लगा, बड़ा आनंद आया, अब आनंद की क्या परिभाषा, कैसा आनंद आया, ऐसा आया कि ऐसा आया कि ऐसा आया, क्या समझाएगा, कोई शब्द नहीं मिलेंगे। इंद्रियों के परे की अवस्था उसकी अनुभूति हो जाए, अरे तो गूंगा हो ही जाएगा ना, कि इंद्रियों के परे की अवस्था तब आएगी जिसकी बात करते हैं कि छंदति हृदय ग्रंथि, वो अवस्था तब आती है, ठाकुर मिल गया तिल ओले, तिल टूटता है, वो अवस्था तब आती है तब सारी इंद्रियां काम करनी बंद कर देंगी। जो सिखाने वाला आचार्य होता है या आचार्य लोग होते हैं उन्हें ट्रेनिंग मिलती है इस बात को चेक करने के लिए, ऐसे ही मन बहुत समाहित हो गया और वो कहेगा हमको निर्वाण की अनुभूति हो गई, हमको मुक्ति की अनुभूति हो गई, तो बहुत लोग ऐसे बोलने वाले आएंगे। तो जो सिखाने वाला है उसे टीचर्स ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि सचमुच निर्वाण की अनुभूति हुई कि नहीं हुई, तो उनमें एक चेकिंग ये होती है कि सारी इंद्रियां काम करनी बंद कर दी कि नहीं कर दी। कान पर चाहे जितनी आवाज़ करो कोई आवाज़ नहीं आएगी, आँख से आँख बंद है खुले तो भी कुछ नहीं दिखेगी, खुल भी नहीं पाएगा, नाक से कोई गंध नहीं महसूस कर पाएगा, जीभ से कुछ रस नहीं महसूस कर पाएगा, त्वचा पर कुछ नहीं महसूस होगा, चित्त काम करना बंद कर देगा, शरीर और चित्त के परे की अवस्था है उसकी अनुभूति, उसको क्षण भर के लिए अनुभूति हो, कुछ सेकंड्स के लिए अनुभूति हो, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, वो जो इंद्रियातीत अवस्था है उसमें से फिर इंद्रिय जगत में आता है, बाकी सारा जीवन जीता है उसी प्रकार से। अनुभूति हुई, एक बार हुई, 10 बार हुई, 100 बार हुई, जितना जितना पकेगा उतनी बार जब चाहे तब उस अनुभूति को कर लेगा, फिर आएगा आदमी बदल गया, पहली बार की अनुभूति से ही आदमी बन गया, आर्य हो गया, संत हो गया। अब उससे ऐसा कोई कर्म हो ही नहीं सकता जो उसको अधोगति की ओर ले जाए, हो ही नहीं सकता, स्वभाव बदल गया, सारा बिहेवियर पैटर्न बदल गया। ये करने के लिए सारी साधना होती है, कोई खेल तमाशे के लिए नहीं, कोई कौतूहल पूरा करने के लिए नहीं, क्या बोलेगा ऐसा आदमी, लोग पीछे पड़ेंगे कि तुमको तो ईश्वर के दर्शन हो गए, बताओ भाई कैसा है ईश्वर, हमारा राम कैसा है बताओ, तो कबीर बेचारा क्या कहेगा, ये हरि कैसा है बताओ, तो कहेंगे कह कबीर हरि ऐसा हरे, कह कबीर हरि ऐसा हरे, जब जैसा तब तैसा रे, जिस क्षण जैसी जैसी अनुभूति हुई उस क्षण का वही हरि है। ये सारे अनित्य जगत का जितना क्षेत्र है उसकी अनुभूतियां भी हरि है, राम कहो, हरि कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, सत्य है, सत्य ही तो ईश्वर है। यो करते करते इंद्रियों के परे की अनुभूति हो गई, वो भी उस क्षण की अनुभूति है, परम सत्य की अनुभूति हो गई, तो परमेश्वर की अनुभूति हो गई। ऐसा ही एक संत क्या कहे बेचारा, लोग पीछे पड़ते हैं क्या अनुभव हुआ तो क्या कहे, ये राम कैसा है बताओ भाई, ये ईश्वर कैसा है तुमको तो अनुभूति हुई बताओ भाई, तो क्या कहे, तो कहता है कि रूप नहीं रेख नहीं, ओ रूप नहीं रंग नहीं, ओ श्वेत नहीं श्याम जी, श्वेत नहीं श्याम जी। अरे उस अवस्था का कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, कोई रेखाएं नहीं है, कैसे समझाऊं कि रूप नहीं रेख नहीं, श्वेत नहीं श्याम जी, न वो गोरा है न वो काला है, ओ तुम सदा एक रस राम जी राम जी, तुम सदा एक रस राम जी राम जी, एक रस है। वहां पर उतार चढ़ाव आता ही नहीं, क्या समझेगा कोई क्या एक रस होता है, अरे बिना अनुभूति पर उतारे हुए सत्य ही नहीं समझ में आएगा, परम सत्य का तो कहना क्या, कल्पनाएं बड़ी अच्छी लगेंगी, ऐसा राम होता है, ऐसा ईश्वर होता है, ऐसा निर्वाण होता है, ऐसी मुक्ति होती है, ऐसा मोक्ष होता है, करो कल्पना, बड़े खुश रहो उस कल्पना से, मिले मिलाएगा कुछ नहीं, रसगुल्ला मीठा है, रसगुल्ला मीठा है, करो कल्पना, सोचते रहो रसगुल्ला बहुत मीठा है, चिंतन करते रहो उसमें शक्कर पड़ी है ना इसलिए मीठा है, इसलिए बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। अरे हमारे जवान पर जब तक न पड़े तब तक क्या मीठा है, हमारे लिए थोड़ी मीठा है, जिसके जवान पर पड़ा उसके लिए मीठा, हमारे लिए मीठा नहीं है। धर्म का काम ही ऐसा है कि इस रास्ते चलने पर, शुद्ध धर्म के रास्ते चलने पर चित्त शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकार निकल रहे हैं, विकार निकल रहे हैं, हम मुक्त अवस्था के समीप जाते जा रहे हैं। हमको इन फिलॉसफियों से कोई लेना देना नहीं, ये दार्शनिक मान्यता ये कहती है, वो दार्शनिक मान्यता ये कहती है, क्या मिल गया? ऐसी दार्शनिक मान्यता को माने कि वैसी दार्शनिक मान्यता को माने, राग तो बनाए जा रहे हैं ना, भीतर ही भीतर प्रतिक्षण राग बनाए जा रहे हैं, द्वेष बनाए जा रहे हैं। ये बात अंदर जाकर के तरंगों को देखना आ जाएगा तब देखेंगे, कभी सुखद चलती है कभी दुखद चलती है, तो सुखद चलती है तो राग बनाए जा रहे हैं, दुखद चलती है द्वेष बनाए जा रहे हैं, और प्रतिक्षण भीतर ये घटना घट रही है। ऊपर ऊपर तो ये है कि चिंतन चल रहा है, चिंतन सुखद चलता है राग पैदा करते हैं, चिंतन दुखद चलता है राग पैदा करते हैं, ये ऊपर के कॉन्शियस माइंड की बात हुई, चेतन चित्त की बात हुई। भीतर का गहराई वाला चित्त वो भी चेतन ही है, पुरानी भाषा में ये कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए, भगवान ने उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया। परित चित्त माने परमित चित्त है, छोटा सा चित्त है, ये ऊपर ऊपर वाला चित्त बड़ा छोटा सा है, मानो 5% होगा, बाकी सारा का सारा 95%, 95% में क्या हो रहा हमको होश ही नहीं, और 5% सारा खेल खेल रहा है, ये अच्छा लगा ये बुरा लगा, ये अच्छा लगा ये बुरा लगा, ये चिंतन ये कल्पना ये कामना। भीतर जाएगा तो एक ही बात है, केवल संवेदना है, सुखद है या दुखद है, सुखद है या दुखद है, और सुखद है तो राग पैदा कर रहे हैं, दुखद है द्वेष पैदा कर रहे हैं। ये बिहेवियर पैटर्न जब तक नहीं टूटेगा मुक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है, और ये इतना साइंटिफिक ढंग से टूटता है, अंदर जाते 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 टूटना शुरू हो जाएगा। ये मान कर मत आ जाना कभी कि 10 दिन में हमारा सारा टूट जाएगा, हम अनंत हो जाएंगे, कोई हो जाए हम उसे बधाई देंगे, बड़ी अच्छी बात, लेकिन काम शुरू हो जाएगा ये निश्चित बात है। बात समझ में आ जाएगी कि जितनी दार्शनिक मान्यताएं हैं वो अपनी जगह रहें, हमको तो एक ही बात, अपने मन को निर्मल करना है, और ये साबुन ऐसी है जो निर्मल करती है, प्रत्यक्ष करती है, ऐसा अपना अनुभूतियों से जानेंगे, साबुन इस्तेमाल करेंगे तो जानेंगे। साबुन अपनी जगह पड़ी है, हमने समझ भी लिया कि साबुन इस्तेमाल करने से मैल उतरेगा, हमारा आंचल मैल से भरा हुआ है, हम साबुन इस्तेमाल ही नहीं करें, उसका प्रयोग ही नहीं करें, तो साबुन का दोष नहीं है, दोष हमारा है। तो आए हो इस धर्म सभा में श्रुत ज्ञान जगाने के लिए, आए हो इस धर्म सभा में घर जाकर चिंतन ज्ञान जगाने के लिए, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहीं गाड़ी रुक जाए तो दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं। सारा जीवन आदमी यही करता है, मैं खूब जान गया, कुछ पढ़ लिया अब मैं खूब जान गया, जाना वाना कुछ नहीं मान रहा है केवल, कुछ सुन लिया अब मैं खूब जान गया, अब तो खूब जान गया धर्म को, कुछ नहीं जाना, कह के भी नहीं जाना, अनुभूति पर उतरे तो जानना कहते हैं। तो भाई अब तीसरा भावनामय प्रज्ञा जगाने के लिए समय निकालना पड़ेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान जागे तो प्रज्ञा जागे, और प्रज्ञा जागे तो प्रज्ञा में स्थित हो, स्थित प्रज्ञ बने, स्थित प्रज्ञ बने तो अनासक्त बने, अनासक्त बने तो जीवन मुक्त बने। जो जो आए हैं आज की धर्म की सभा में, सारे लोग स्थित प्रज्ञ बने, अनासक्त बने, सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्ति मुक्ति हो, स्वस्ति मुक्ति हो। मोह क्या होता है, उसे भावना के जरिए कैसे दूर किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, आज तो मोह आसक्ति को कहने लगे कि इस व्यक्ति को अपने बच्चों में बहुत मोह है, अपने पत्नी में बहुत मोह है, अपने धन में बहुत मोह है, लेकिन पुरानी भाषा में मोह कहते थे अज्ञान को, पता ही नहीं क्या हो रहा है, अपने भीतर अंधेरा ही अंधेरा है, अंदर अंदर क्या हो रहा है, हम विकार जगाए जा रहे हैं, राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, और हमें होश ही नहीं, ऊपर ऊपर से समझते हैं बड़े धर्मवान हैं, इसको मोह कहा, इसको अविद्या कहा, इसको अज्ञान कहा। प्रवचन में दिए हुए भंग ज्ञान एवं एनलाइटनमेंट का विचार क्या आपने अपने अनुभूति के आधार पर दिया है या एक साधना विधि का सैद्धांतिक पक्ष है? केवल एक की नहीं, सैकड़ों लोगों की अनुभूति इस युग में माने बुद्ध के समय जो हुआ वो बात अलग, और तब से लेकर के 2500 वर्ष में हुआ उसको एक और रखें, आज भी वो अवस्था हर व्यक्ति प्रयत्न करे, मेहनत करे और उसके पास पीछे का संग्रह हो अच्छा तो प्राप्त करता ही है। बुद्ध काल में कुछ समय के देर भी बहुत से लोग श्रोतापन अरहंत हुआ, इस बात का उदाहरण अपने दे दी है। आपको विधि सिखाते हुए भी करीब 2 दशकों से अधिक हो चुका है, आपके विचार में कितने लोग इस अवस्था पर पहुंचे हैं? इस अवस्था पर अगर एक भी नहीं पहुंचता तो हमारा एक कदम सिखाने का नहीं चलता। इस अवस्था पर लोग पहुंचते हैं इसीलिए ये विद्या सिखाई जाती है। बहुत कम, ये मान के नहीं चलना चाहिए कि हर व्यक्ति काम करते ही इस अवस्था पर पहुंचेगा, क्योंकि पुराने लेप इतने लगाए बैठे हैं उनको उतारने में बड़ा समय लगता है। काम किए जा रहा है अपना पुराना लेप साथ रखता है, काम किए जा रहा है पुराना लेप साथ रखता है, तो काम होता नहीं, 2 कदम आगे चलता है 3 कदम पीछे हटता है, 2 कदम आगे चलता है 3 कदम पीछे हटता है, तो बहुत देर लगती है ऐसे लोगों को। लेकिन कुछ लोग अवश्य इस अवस्था तक पहुँचे हैं, इसी मारे इस विद्या को साइंटिफिक और रिजल्ट ओरिएंटेड कहते हैं। लुम्बिनी विकास कोष के कई पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। गुरुजी के सार गर्भित प्रवचन से उन्हें लुम्बिनी विकास की कछुए की चाल को तीव्र गति देने का सक्रिय रूप मिले, इसकी प्रेरित हो। बुद्ध के इस अमूल्य विद्या के अभ्यास के लिए लुम्बिनी विपश्यना केंद्र का स्थापना होनी चाहिए। होगी, अवश्य ही होगी। लुम्बिनी का विकास इसी बात में होगा कि वहाँ पर यह सक्रिय अभ्यास सिखाया जाए। केवल नमस्कार करने से बुद्ध की शिक्षा का सही मूल्यांकन नहीं हुआ। आई लर्न टेक्निक ऑफ विपश्यना मेडिटेशन एट योर प्रेजेंस 3 years ago. सॉरी टू से दैट नॉट प्रैक्टिसिंग रेगुलरली वेरी अनफॉर्चुनेट। यू लर्न समथिंग एंड यू डोंट प्रैक्टिस इट डेली, यू वोंट गेट द बेनिफिट। फॉर 10 days यू जस्ट गेट ए टेक्निक, बट यू हैव टू वर्क एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग, देन यू हैव टू अप्लाई इट इन लाइफ, देन ओनली इट स्टार्ट्स गिविंग द डेफिनेट रिजल्ट्स। In this connection, I have a problem regarding food, that is vegetarian food is not available always in my house, not necessary. At the course, vegetarian food is a must. Going back home, slowly, it so happens that one naturally becomes vegetarian. But one should not force oneself to become vegetarian, let the Dhamma develop inside and naturally you will become vegetarian. What is the complete and perfect Vipassana living? You live a life where you yourself feel peace and harmony within, and you generate nothing but peace and harmony for others. This is a Vipassana way of life. Vipassana shivir mein jane ki ichcha hua. Dekho bhai, ye koi padh ke sunaye hum, iska anuvad bataiye. Ye bhi Nepali mein lagta hai. क्यों और कैसे हम बुद्ध धर्म और संघ के शरण में जाएं? बुद्ध के शरण में जाने का मतलब किसी व्यक्ति के शरण में जाना नहीं है, खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। संघ के शरण में जाने का मतलब किसी व्यक्ति के शरण में जाना नहीं है, जो गुण हैं उनमें, बुद्ध बुद्ध इसलिए है कि वो धर्म है, संघ संघ इसलिए है कि उसमें धर्म है। बस धर्म की शरण ये प्रतीक हैं, और धर्म की शरण तभी होगी जबकि धर्म धारण करना शुरू कर देंगे। धर्म धारण नहीं करें और वैसे ही कहें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तो कोरा कर्म कांड हो जाएगा। धर्म धारण करें, धर्म का रस चक्र देखें। क्यों, समझ में आई बात? क्या प्रश्न था?
ये सारा प्रश्न इंग्लिश में क्यों होता है?
क्या करें, कोई कोई ये प्रश्न आया कि ये प्रश्न अंग्रेजी में क्यों होते हैं? अब किसी भाई को हिंदी ना आती हो और नेपाली हमें नहीं आती तब क्या करें? तब अंग्रेजी में पूछे तो हमको अंग्रेजी में जवाब देना पड़े। उनके प्रति मैत्री रखो मेरे भाई, द्वेष नहीं, दूसरा भी है। विपश्यना शिविर में जाने के लिए क्या करना चाहिए? बस चले आना चाहिए, और क्या करना चाहिए? करने को कुछ नहीं है, कोई तैयारी पहले करनी होती ही नहीं, क्लीन स्लेट के साथ चले आओ। अपने जीवन के 10 दिन तो तुम्हें देने होंगे, उसके बिना तो बात बनती नहीं, तो सारा संपर्क दुनिया का काट करके 10 दिन के लिए चले आओ, लाभ ही होगा। शुद्ध धर्म में चलने से क्या मिलता है? चल के देखो क्या मिलता है। हम चले, हमें कुछ मिला मिलता है, इसलिए हम सिखाते हैं। और लोग चले हैं इसलिए उनको कुछ मिलता है तो आते हैं, आके देखो, चल के देखो, खूब मिलेगा, समय नष्ट नहीं होगा। भगवान और देवता क्या हैं इसमें, क्या मैथुन, भगवान क्या है, देवता क्या है, किसको भगवान कहें? भग रागो होती भगवा, भग दोष होती भगवा, भग मोह होती भगवा, जिसने अपना सारा राग भग्न कर लिया, द्वेष भग्न कर लिया, मोह भग्न कर लिया, वो भगवान बन गया, मुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीता है। और देवता एक योनि है, जैसी अपनी योनि है वैसे देवों की योनि है, वैसे ब्रह्माओं की योनि है, जन्म लेते हैं समय पाकर के मर जाते हैं, जन्म लेते हैं समय पाकर मर जाते हैं, बस यही है और क्या है। दो तीन महीने से मैं अष्टांग योग अपने आप कर रहा हूँ, फल अच्छा प्राप्त होता जा रहा है, क्या मुझे भी आपके शिविर में सहभागी होना अच्छा है? अगर ये मन में होता है कि इससे भी गहरी कोई विद्या है, अष्टांग योग बहुत सदियों के बाद बना, विपश्यना, जब देश से विपश्यना लुप्त हो गई तब उसको याद करते हुए ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसे जोड़ तोड़ करके तैयार हुआ, लेकिन उसके शुद्ध रूप में से गुजरोगे तो दोनों समझ में आएंगे, अष्टांग योग की बात भी समझ में आएगी, इसकी बात भी समझ में आएगी, और बहुत गहराई से अनुभव होगा। लंबे प्रश्न हैं, राग द्वेष हटाकर सत्य अहिंसा करुणा मैत्री प्रकट करने वाले आपके विपश्यना मंत्र देश के उच्च स्तरीय व्यक्तियों में अपनाए तो ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई उच्च कोटि का धर्मदान हुआ है? सब चाहते हैं कोई और अपना ले, ये उच्च कोटि वाले अपना ले, हम तो ठीक ही, हमारे में क्या दोष है? अरे हर आदमी में दोष है भाई, तुम अपने आप को सुधारो। उच्च कोटि वाले दुखी हैं, अगर वो नहीं सुधारते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम अपने सिर पर काहे लेते हो? जब उनको समझ में आ जाएगा कि हम बड़े दुखियारे हैं और हम उच्च कोटि पर हैं तो हमको तो बहुत काम करना है, और ऐसा काम करना है जिसमें लोक कल्याण हो, तो अपने आप खींचे हुए चले आएंगे। हर आदमी में सुधार की गुंजाइश है, चाहे वो उच्च कोटि का है कि निम्न कोटि का है, मानव मानव है, सारे एक से हैं। आपका जो करुणा मैत्री तथा सत्य जगाने वाले जो विपश्यना साधना है, इससे प्राकृत रूप से रोगग्रस्त शरीर ऐसे दुखित लोगों को दूर करने के लिए विपश्यना पद्धति से क्या हो सकता है? कोई आदमी शारीरिक लोग के लिए अगर विपश्यना में आता है तो हम कहेंगे नहीं आए, नहीं आए तो अच्छा, क्योंकि न उसे ये मिलेगा न वो मिलेगा, न माया मिलेगी न राम मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलेंगे। उसका सारा ध्यान 10 दिन तक यही रहेगा, मेरा रोग ठीक हुआ कि नहीं, मेरा रोग ठीक हुआ कि नहीं, अब उसमें क्या सुधार हुआ, अब उसमें वो करेगा ही नहीं विपश्यना। इसीलिए इस परंपरा में कोई आदमी इसलिए आवे तो लेते भी नहीं उसे। मैं अपने अनुभव की बात कहूँ, मुझे माइग्रेन का रोग बहुत रहता था, किसी ने कहा इस विद्या से ठीक हो जाएगा, गुरुजी के पास गया, अपनी बात बताई, उन्होंने कहा जाओ चले जाओ किसी अस्पताल में इलाज कराओ, हम नहीं लेते तुमको। इतनी ऊंची अध्यात्म की विद्या जो जन्म जन्म के दुखों से मुक्त कर दे, उसका उपयोग इस छोटे से काम के लिए करते हो तो विद्या का अवमूल्यन हो गया, धर्म का अवमूल्यन हो गया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं अपने चित्त को निर्मल करने के लिए आया हूँ ये लक्ष्य बना करके आवे तो बाकी तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप होगा ही। मन से संबंध रखने वाले जितने शारीरिक रोग हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्य ये होगा कि मुझको अपना शारीरिक रोग दूर करना है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए ये भाव लेकर के नहीं आना चाहिए। तृष्णा क्या पाप होती है, करके देखो तो पता लगेगा किसको पाप कहें किसको पुण्य कहें। जो हमें बेचैन बनाता है वो पाप होता है, और भीतर जैसे ही तृष्णा जागेगी, राग की जागे या द्वेष की जागे, तृष्णा जागेगी देखोगे भीतर बहुत बेचैन हो गए, बहुत बेचैन हो गए, भीतर देखना सीखा नहीं ना, इसलिए पाप पुण्य को सही रूप में समझ नहीं पाए। पुस्तकों के कारण से ही किसी को पाप किसी को पुण्य मानने लगे। ए पर्सन इन्फेक्टेड विद वर्म्स टेक्स एंटी वर्म मेडिसिन टू किल दोज वर्म्स, सिमिलरली ए फार्मर यूजेस इंसेक्टिसाइड टू किल इंसेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग हिज क्रॉप्स। वेल दिस इज व्हाट इट इज नाउ एट दिस स्टेज। When as Dhamma grows, then all these scientists and all these industrialists, they will start developing such kind of things which will, instead of killing, it will replace it, it will take them away, and that is the best solution. Any poison that you use, insecticide, pesticide, may kill those beings, but at the same time it is so harmful for the human beings also. Guruji ka pravachan sunkar त्रिकोटी लोग सो रहा है, क्या मैं उस लोगों को प्रवचन सुनने के लिए रिक्वेस्ट करूं? जो सो रही हैं वो सो रही हैं, हाँ हम क्या करें, हमारे जगाने से कोई नहीं जागेगा, समय आएगा तो जागेगा, पर अपनी ओर से तो कहना ही चाहिए कि सोना नहीं है भाई, जागो। जो जागता है उसके घर में चोर नहीं आते हैं, आ भी जाए भूले चुके तो देख लेंगे तो जाग रहा है तो भाग जाएंगे। तो जागो, भीतर की जागृति पैदा करो, फिर ये विकार आएंगे नहीं, आ गए तो तुरंत भाग जाएंगे, टिकेंगे नहीं। मेरे मार्गदर्शक का कहना है कि जब जब घनीभूत संवेदना मिले तब उस वेदना के केंद्र बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करके रहना चाहिए, जब तक कुछ बदलाव या पिघलने की अनुभूति नहीं होती, नहीं कभी नहीं करना चाहिए। देखा थोड़ी देर आगे चले गए, देखा थोड़ी देर आगे चले गए तो अपने स्वभाव से पिघलेगा ही, कितना ही घनीभूत अनुभूति क्यों न हो। और मैं इस घनीभूत अनुभूति को देख देख के पिघला दूंगा तो अहंकार जागेगा, मैं पिघला के छोड़ूंगा तो अनबैलेंस्ड हो जाओगे तो काम नहीं होगा। हमने अपना काम कर लिया, देख लिया, दूसरे राउंड में फिर देखते हैं, तीसरे राउंड में फिर देखते हैं, देखते देखते अपने आप पिघल जाएगी, यही तरीका होता है। इन धम्म श्रृंग फॉरेनर्स स्पेशली वेस्टर्न स्टूडेंट्स आर बीइंग डिनाइड द चांस ऑफ accumulating parmis by refusing their dhamma seva. The difficulty may be with the management, because many a times people don't know the language and this language barrier creates difficulty. Therefore, it is not that because they are Westerners they are denied. There are Westerners who give service. Even now there is a Westerner who has come with me and is giving very good service. There is no such restriction, but limitations are there. Don't expect that every facility will be granted to everyone. अंधविश्वास क्या है? सत्य युग के सब कुछ अंधविश्वास है। अंधविश्वास वही है जो अपनी अनुभूति पर नहीं उतरता फिर भी हम माने जा रहे हैं, चाहे जैसा हो, सही से सही बात हो, जब तक हमारी अनुभूति पर नहीं उतरी तब तक हम केवल विश्वास कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। जिस दिन अनुभूति पर उतर जाएगी उस दिन विश्वास निकल गया, अंधविश्वास निकल गया, सही विश्वास रह गया। आई एम 39 years old. I am a patient of open angle glaucoma since 1988. Well, if you come for the curing of your disease, then this is not the place for that. You get yourself cured with the proper doctor outside and come to get this high spiritual path to come out of your mental misery. This path will purify your mind and will take you to the stage where all your miseries, mind and matter, will automatically get eradicated. आपको इस इंद्रियातीत अवस्था या हृदय पर अंगूठे समान तिल समान जगह के बाद की अवस्था अनुभूति हुई है कि नहीं? हम हमारे बारे में इतनी कहें कि तुमसे थोड़ी ज्यादा अनुभूति हुई है इसलिए सिखाने लायक है, और अपने बारे में क्या कहें? अपने बारे में तो अपना जीवन बोलेगा, हमारा जीवन कैसा है उसी से जांचो। हम कह देंगे हमें हुई है अनुभूति तो तुम्हें कैसे विश्वास होगा? हम कहें नहीं हुई है तो अरे इसी को नहीं हुई तो हमको कैसे होगी? तो अपने बारे में नहीं कुछ कहा जाता, उसका जीवन कहता है। इतना जरूर कहा जाता है कि मैं कुछ समय पहले इस रास्ते पर चल पड़ा इसलिए तुमसे दो कदम आगे हूं और बताने लायक हूं, आओ और अजमा के देखो। स्वधर्म निधन श्रेय पर धर्मो भयाव है। मनुष्य का अपना एक धर्म है, पशुओं का अपना धर्म है। जो काम मनुष्य कर सकता है पशु नहीं कर सकता, तो स्वधर्म मनुष्यों का अपना धर्म हम इस अर्थ में लेते हैं, और लोगों ने भिन्न भिन्न अर्थ किए होंगे, हम इस अर्थ में लेते हैं मनुष्यों का अपना धर्म यही है कि अपने भीतर सच्चाई का साक्षात्कार करें, क्योंकि वही कर सकता है। ये काम पशु नहीं कर सकता, पक्षी नहीं कर सकते, सरीसृप नहीं कर सकते, कीट पतंग नहीं कर सकते, प्रेत प्राणी नहीं कर सकते। मनुष्य को कुदरत ने यों को परमात्मा ने कैसी शक्ति दी है कि वह अंतर्मुखी होकर के जो सत्य जैसा है उसको क्षण प्रतिक्षण देख सकता है। न देखे ये उसका अभागापन है, लेकिन देख सकता है, और ये काम पशु नहीं कर सकता। इसलिए स्वधर्म यही है कि हम अपने भीतर सच्चाई को, स्वयं संबंधी सच्चाई को देख सकें, और इसको छोड़ करके पर धर्म में अगर जीवन बिता दिया, पशुओं का सा जीवन बिता दिया, पक्षियों का सा जीवन बिता दिया, तो सचमुच भयावह है। इतना अनमोल जीवन मिला और उसका उपयोग नहीं किया तो भयावह बात हुई। गृहस्थों के लिए माया आवश्यक है कि नहीं? नहीं तो अगर माता को संतान के पालन पोषण में राग बिना लगाव बिना कैसे करे? अच्छा प्रश्न है। माता को अपने संतान के प्रति वात्सल्य भाव होना बुरी बात नहीं, आवश्यक बात है, लेकिन आसक्त हो जाना, राग रंजित हो जाना वो बिल्कुल अलग बात है। इतना आसक्त हो जाना, बच्चा बीमार हो गया, हम रोए जा रहे हैं, अरे मेरा बच्चा बीमार हो गया, अरे बच्चा बीमार, बच्चा बीमार हो गया, हमें इसकी सेवा करनी है, हम इसके हर प्रकार सेवा करेंगे, ये हमारा धर्म है, और सेवा करने में नहीं सफल हुए तो मुस्कराएंगे, अच्छा इस सेवा में नहीं सफल हुए और तरह से करें, नहीं सफल हुए फिर मुस्कराएंगे, तो समझो अनासक्त होकर के वात्सल्य भाव रख रहा है, बड़ा सुखी रहेगा। आसक्त होकर के, अटैच्ड होकर के कोई समझे कि मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, वो ड्यूटी निभती नहीं, स्वयं भी दुखी होता है औरों को भी दुखी बनाता है। जीवन के मुक्ति के लिए साधना जरूरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं? इसके अलावा तो कल्पना है, कल्पना किए जाओ, मांगनी किए जाओ, भीख मांगे जाओ, हमारे लिए कर दो, हे हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो। कैसे होगा भाई, सोचो तो सही जरा, मनुष्य है ना, बुद्धिशाली व्यक्ति होता है मनुष्य, प्राणी, इसीलिए मनुष्य कहते हैं, मनुपुत्र कहते हैं मनुष्य को, मनन करना, चिंतन करना उसका धर्म है। कि मांगने पर अगर मुक्ति मिल जाती है तो सारे लोग मांगते हैं ना, सबको क्यों नहीं मिलती, मुझे ही कैसे मिल जाएगी? तो इस जंजाल के बाहर आए, मांगने की बात छोड़ें, श्रम करें, मेहनत करें, बिना श्रम किए रोज की रोटी नहीं मिलती, तो मुक्ति जैसी चीज बिना श्रम के मिल जाएगी, ये कैसी बात हुई? साधना माने श्रम करना है, मेहनत करना है, अपने भीतर अध्यात्म का मेहनत करना है, अपने आप फल आएगा ही। बताओ भाई इसे भी। प्रश्न किया गया कि किसी को अंधभक्त नहीं होना चाहिए, और साथ साथ ये कहा गया कि आप बुद्ध के भक्त होने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल झूठ समझा हमें, हम धर्म के भक्त होने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध के हजार भक्त हो जाओ, बुद्ध के गुण गाते रहो, बुद्ध के नमस्कार करते रहो, तो ऊपर ऊपर का लाभ तो होगा, पर जो शिक्षा बुद्ध ने दी, और बुद्ध केवल गौतम बुद्ध नहीं हुआ, न जाने कितने हुए, गिनती नहीं उनकी, और आगे भी न जाने कितने होंगे, गिनती नहीं उनकी, तो क्या हुआ? जिसको बोधि जाग गई उसका नाम बुद्ध। तो बोधि हर किसी में जाग सकती है, जो मेहनत करेगा उसमें बोधि जागेगी। तो बोधि की शरण है, बोधि की भक्ति है, और भक्ति के माने उसके समीप जा करके और उस काम को करना है, बोधि के समीप जा करके बोधि को जगाना है, बस यही भक्ति है। और दूसरी केवल प्रार्थना करने से, पूजा करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा होता नहीं। हमें जो अनुभूति होती है वो दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? यदि कर सकते हैं तो कैसे और किस हद तक? अपनी अनुभूतियों की बातें दूसरे से कहोगे तो एक अंश में अहंकार जाग सकता है, देख मुझे ऐसी अनुभूति हुई, देख मुझे ऐसी अनुभूति। अभी किसने प्रश्न किया ना, आपको क्या अनुभूति हुई? हम अपनी अनुभूति की बात कहें, अनुभूति की बात नहीं कहनी, उसके रिजल्ट की बात कहनी। अनुभूति हुई, विपश्यना का काम किया हमने, और उससे देखो ये लाभ हुआ, हमारा क्रोध कम हुआ, कि ईर्ष्या कम हुई, कि भय कम हुआ, कि वासना कम हुई, कुछ विकार कम हुआ। तो वो सत्य जितना हुआ उतना ही, बड़ा चढ़ा के नहीं, नहीं तो अपनी हानि कर लेंगे। मैं और मेरी श्रीमती किसी से कभी कोई राग द्वेष ईर्ष्या शत्रुता कटुता लोभ और किसी के व्यक्तिगत जिनकी बातों में कभी नहीं करते। सादगी और सदाचार से रहना, कम बोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कितना ही सदाचार का जीवन जिए, सदाचार पहला कदम है। अंतर मन की गहराइयों में अनेक जन्मों से जो ग्रंथियां बांधे बैठे हैं, अनेक जन्मों से जो बिहेवियर पैटर्न बैठाए बैठे हैं, वो अपना काम किए ही जा रहा है। एक व्यक्ति ऊपर से बड़ा सज्जन लगता है, बड़ा संत लगता है, उस बेचारे ने कभी अंतर्मुखी होकर के गहराइयों तक जो विकार जाग रहे हैं उनको देखने का काम किया ही नहीं, तो उसका अनकॉन्शियस माइंड अंदर अंदर राग जगाता है, द्वेष जगाता है। कॉन्शियस माइंड बड़ा निर्मल है, ऊपर ऊपर से कोई उसमें खोट नहीं नजर आता, भीतर खोट भरे हुए हैं। तो जड़ें जब तक दूषित हैं तब तक पेड़ लगेगा एक बार कि बड़ा स्वस्थ है, लेकिन जड़ें दूषित है तो वो अस्वस्थ हो ही जाएगा, देर सवेर हो जाएगा। इसलिए भीतर से जड़ें साफ करनी चाहिए, उसे शुद्ध करना चाहिए, उसे निरोगा करना चाहिए। गत 3 दिनों से आपकी अमूल्य वाणी सुयोधन बनने की कोशिश में हूं, पर कल की एक घटना मुझे अशांत कर दिया है। एक मेरे रिश्तेदार हैं, उनका सर्वोच्च अदालत में केस है। अरे उससे कहे अशांत होते हो भाई, किसके जीवन में नहीं होता है? कोई आदमी ऐसा जिसके जीवन में अनचाही बात नहीं होती? सबके जीवन में अनचाही भी होगी, मनचाही भी होगी। अनचाही ज्यादा होगी, मनचाही थोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मनचाही होते ही फिर दूसरी मनचाही शुरू कर देंगे। एक मनचाही पूरी हुई कि तुरंत दूसरे सिर उठाएगी, वो पूरी हुई कि तुरंत तीसरे सिर उठाएगी, अंत नहीं आएगा। तो इसकी ऐसी बिना पैंदे की बाल्टियां कभी भरी नहीं जाएगी। तो अनचाही अनचाही मान करके चलना पड़ेगा। अनचाही हो लेकिन फिर भी हम व्याकुल नहीं हो, बस विपश्यना से यही सीखते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, हम व्याकुल नहीं होते, हर अवस्था में मुस्कराएंगे और उसका सामना करेंगे, उसके लिए रास्ता निकालेंगे। हम विचलित हो गए, हमने अपनी समता खो दी, अपना संतुलन खो दिया, तो जो निर्णय करेंगे वो गलत निर्णय होगा, जो काम करेंगे वो गलत काम होगा। हमें जीवन में जैसी सफलता मिलनी चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलेगी। और भीतर से अगर हमने समता स्थापित कर ली, मन संतुलित है, बाहर चाहे जैसी घटना घटी हमारे मन का संतुलन नहीं बिगड़ा, हमने अपनी समता नहीं खोई, देखिए कि हम जो चिंतन करते हैं वो ठीक होगा, जो निर्णय करते हैं वो ठीक होगा, और जो काम करते हैं वो अपने आप ठीक होगा, फलदायी होगा, अपने लिए भी औरों के लिए भी। गृहस्थ का जीवन अच्छा है या सन्यासी का जीवन अच्छा है? सन्यासी का जीवन बहुत ऊंचा जीवन होता है। सारी आसक्तियों को त्याग करके केवल एक ही काम में लगना है कि ये मनुष्य का जीवन मिला है और इसका ऐसा उपयोग हो कि इसी जीवन में हम अनासक्त अवस्था तक, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएं। लेकिन केवल कपड़े बदल लिए और वो काम करे नहीं बिल्कुल, तो बात बने नहीं। हर आदमी सन्यासी बन नहीं सकता। तो धर्म केवल सन्यासियों के लिए है ये मान के नहीं चलना चाहिए। विपश्यना गृहस्थ भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है। गृहस्थ के और बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो जीवन का थोड़ा सा हिस्सा विपश्यना को देगा, रोज सुबह शाम घंटे घंटे करेगा, बाकी अपने काम में रहेगा, काम में रहते हुए विपश्यना का उपयोग करेगा। सन्यासी के लिए, भिक्षु के लिए, भिक्षुणी के लिए और कुछ है ही नहीं। हाथ पसार करके जो मिल गया सो खा लिया, दो वस्त्र मिले हैं वो पहन लिए, और कुछ है ही नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। तो इसलिए उनके पास ज्यादा समय है। अगर इस प्रकार त्याग से काम करते हैं तो हमारे पूज्य हैं, हमारे लिए आदर्श हैं। हर व्यक्ति सन्यासी होने पर ही मुक्त होगा ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन गृहस्थ होते हुए बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। सन्यासी होने पर कठिनाइयां अपने आप कम हो जाती हैं, क्योंकि उन पर बहुत जिम्मेदारियां नहीं हैं जीवन की। सन्यासी भी जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी जिम्मेदारी यही है कि जो कल्याण मेरा हुआ वैसे औरों का हो जाए, ऐसा सिखाने का काम करता है। जैसे आगे बढ़ेगा वैसे, तो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, धर्म सबके लिए कल्याणकारी है, विपश्यना सबके लिए कल्याणकारी है। सबका कल्याण हो, मंगल हो, स्वस्थ मुक्ति हो।